मैं जोया हूँ। जोया डॉक्टर शहबाज खान के साथ स्टेज पर थी। डॉक्टर शहबाज खान डार्क ब्राउन पेंट कोट में बेहद स्मार्ट लग रहे थे, वाइट शर्ट के साथ लाइट ब्राउन प्रिंटेड चमकती हुई टाई, जहानत से चमकती हुई रोशन आँखें, 6 फुट से निकलता हुआ उनका कद उनको सबसे मुमताज कर रहा था। खानदानी वजाहत उनके चेहरों से नजर आ रही थी। डॉक्टर फरा को ऐसे लगा जैसे डॉक्टर शहबाज खान की इतनी इज्जत और अहमियत की वजह से उसकी भी इज्जत बढ़ गई है। डॉक्टर शहबाज खान जब सोया के हमरा स्टेज से उतरे तो नादर खान भी उनके साथ थे। नादर खान ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर शहबाज खान बोले, अब हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी पहली मुलाकात है, मगर आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई है। मुझे खुशी है कि फरा आप जैसे काबिल डॉक्टर के साथ लंदन में काम कर रही है। पहली बार नादर खान को तालीम की अहमियत का एहसास हुआ। इन 2-3 दिनों में नादर खान ने देखा कि शादी की तकरीबात में जितने मुअज्जज़ीन आए थे उनमें से शहर के काफ़ी पढ़े लिखे और डॉक्टर्स भी थे। वो सब डॉक्टर शहबाज खान की जिस तरह इज्जत कर रहे थे वो नाकाबिले यकीन थी कि दौलत और जायदाद के अलावा भी कोई ऐसी सनत है जो इंसान को इतनी इज्जत देती है। सबकी आंखों में डॉक्टर साहब के लिए बहुत इज्जत और एहतराम था। तभी शायद पहली बार नादर खान को अपनी बहन फरा के डॉक्टर होने पर फ़ख्र महसूस हुआ। वलीमे की तकरीब में बहुत से डॉक्टर आए थे और सब डॉक्टर शहबाज खान से सुरूर मिल रहे थे, बल्कि आगा हाँ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर शौकत ज़मीर तो सारा वक्त डॉक्टर शहबाज खान के साथ रहे। आगा हाँ हॉस्पिटल में सालाना डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने ख़ास तौर पर डॉक्टर शहबाज खान और डॉक्टर फरा से दरख्वास्त की कि वो उसमें एज ए चीफ गेस्ट शिरकत करें। वैसे तो डॉक्टर्स को इस तरह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इन्विटेशन आते रहते हैं, मगर अब जब वो पाकिस्तान में हैं तो ज़रूर इसमें शिरकत करें। दूसरे रोज़ ही कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर फरा, हमारे लिए भी बहुत एजाज़ की बात होगी कि क्वीन हॉस्पिटल के 2 सीनियर डॉक्टर हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। डॉक्टर शौकत ज़मीन ने नादर खान के सामने डॉक्टर फरा को भी दावत देते हुए कहा। डॉक्टर फरा ने खामोशी से नादर खान की तरफ देखा। ज़रूर फरा ज़रूर आएगी, बल्कि मैं खुद उसको लेकर आऊँगा। फरा के लिए यह बिल्कुल अनहोनी सी बात थी। उसके चेहरे की हैरानगी डॉक्टर शहबाज से छुपी ना रह सकी। डॉक्टर शहबाज खान और जोया की कल की वापसी की फ़्लाइट थी, मगर डॉक्टर शौकत ज़मीर के इसरार पर उन्होंने एक दिन पर मौखर कर दी। ठीक है, इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी, डॉक्टर शौकत ज़मीर ने अलविदाई कलमात बोलकर रुख्सत चाही। काफ़ी मेहमान जा चुके थे। दुल्हा और दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था। नादर खान, डॉक्टर शहबाज खान और जोया के टेबल पर बैठ गए। फरा, यहीं बैठ जाओ, नादर खान ने फरा को जाते देख कर कहा। एक और हैरानगी, या अल्लाह क्या कोई मुआजा होने वाला है, फरा ने दिल में सोचा। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारे बेटे की शादी में शिरकत की। अब तो नादर खान कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस नज़र आ रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लगा है, मुस्कुराहट डॉक्टर शहबाज खान के होंठों पर थी। डॉक्टर शहबाज खान ने डॉक्टर फरा के साथ बिल्कुल फार्मर रवैया रखा। डॉक्टर फरा ने बताया कि उनको भी आगा हाँ हॉस्पिटल की तरफ से पहले ही ईमेल आ चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स क्लब में सब डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। वहाँ से उनको पता चल चुका था कि आजकल डॉक्टर फरा छुट्टी पर पाकिस्तान में हैं, और खुशनसीबी से डॉक्टर शहबाज खान भी आजकल पाकिस्तान में ही हैं। दुल्हा दुल्हन रुखसत हुए तो सारे मेहमान भी चल दिए। डॉक्टर शहबाज खान जोया के हमरा चले तो नादर खान ने उनको अपनी ब्लैक लैंड क्रूज़र में चलने की दावत दी। ज़ुलेखा, फरहान और जमान के साथ जा रही थी। डॉक्टर शहबाज खान का होटल में स्टे था और उनको वहाँ ड्रॉप करना था। नादर खान के हमरा डॉक्टर फरा और जोया वापस हवेली में आ गईं। दुल्हा और दुल्हन हस्बे रिवायत आज दुल्हन के मेके में चले गए। मेहमान भी कुछ जा चुके थे और कुछ सुबह जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। हवेली पहुंचकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद एक मुलाजम डॉक्टर फरा के रूम में जोया के फ़ोन का चार्जर दे गया। जोया ने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद ड्रेस चेंज करने के बाद जोया ने अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। जोया, तुम कल चली जाओगी, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। बिल्कुल सच फराबाजी, आप बहुत प्यारी हैं, जितना मैं सोचती थी आप उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। चलें एक सेल्फी मेरे फ़ोन से हो जाए। आज की जो भी तस्वीरें हैं वो सब आपके फ़ोन में हैं, वो मुझे आप प्लीज़ ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ज़ोया ने अपना फ़ोन देखा, चार्ज तो हो चुका था। ज़ोया को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फरा बाजी प्लीज़ ज़रा इसको ऑन कर दें, लाओ इधर। फरा ने फ़ोन लेकर उसको चार्ज से उतारा और फिर उसको से ऑन करके ज़ोया को दे दिया। ये देखो इसकी स्क्रीन रोशन हो गई है और ये ऑन हो गया है। चलिए पहले कल की तस्वीरें देखते हैं, ज़ोया बोली। फरा ने वीडियो ऑन कर दी। मेहंदी और शादी के फंक्शन और फायरवर्क के बहुत खूबसूरत वीडियो बनी हुई थी। अरे वाह ज़ोया, तुमने तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। शादी की रात जो फायरवर्क हुआ था उसकी वीडियो चल रही थी जो ज़ोया ने पिछले राउंड में बनाई थी। वीडियो चलते हुए अचानक एक आवाज़ आई, अरे फरा बाची आपको क्या हुआ? और फिर फ़ोन गिर गया और फिर उसकी स्क्रीन पर कुछ नहीं था बल्कि कुछ आवाज़ें आ रही थी। पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ फ़ोन की साउंड क्वालिटी भी बहुत क्लियर और ज़बरदस्त थी। सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, फरा और ज़ोया की आपस में सारी गुफ्तगू, और फिर फरा ज़ोया की आवाज़ें दूर होती गई और खामोशी छा गई। कभी कभी फायरवर्क होता तो स्क्रीन पर रोशनी थोड़ी देर के लिए नज़र आती। फरा और ज़ोया दोनों कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी हुई थी। ज़ोया ने टेबल पर रखे हुए चिप्स खाना शुरू कर दिए। अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, क्या ख्याल है खाने के लिए कुछ मंगवा लूँ? फरा बोली, नहीं बाजी यहाँ काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट और जूस के टिन भी हैं। ज़ोया ने अपनी पसंद का फेवरेट रानी पीच जूस का टिन खोलकर पीना शुरू कर दिया। अचानक फ़ोन से आवाज़ें आने लगी, जैसे लग रहा था कोई बहुत गुस्से में है। आवाज़ें दूर से थीं, यकदम आवाज़ें बिल्कुल क्लियर हो गईं। बताओ ज़ुलेखा ये सब क्या है? नादिर खान की आवाज़ बहुत करख्त और तेज़ थी। मुझे क्या पता, फुरकान ने ये सब कुछ किया है। तुमने तो कहा था वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देंगे, मगर मुझे ये क्यों नहीं बताया गया कि मुझे भी फुरकान की जायदाद का हिस्सा उसके नाम करना होगा? नादिर खान का गुस्सा अपने उरूज पर था। मुझे खुद कहाँ मालूम था, सुलेखा चिल्लाई। सुलेखा तुम्हें सब कुछ पता था, बेटे की मोहब्बत में तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी। साई मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। उस हाशिम खान ने फुरकान के हिस्से की जायदाद के कागजात भी तैयार करके रखे हुए थे और सारी बेहतरीन जायदाद फुरकान के नाम हो गई। मेरे साथ तुम माँ बेटे ने धोखा किया है, नादिर खान का बस नहीं चल रहा था, वो क्या करें? साई ये सारा किया धिरा फरकान का है। रिश्ता करवाने के बाद मुझे पता चला कि फुरकान ने अपनी पसंद और मर्जी से रिश्ता हमसे तय करवाया है और हमें तो यही लगता रहा कि हमने उसका रिश्ता खुद देख भाल कर तय किया है। क्या फुरकान खान ने अपनी पसंद की शादी की है? मगर हमको तो ऐसे बताता रहा कि जैसे वो सिर्फ हमारे कहने पर ही शादी कर रहा है। हमें तो यही कह रहा था मगर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, जुलेखा बोली। फुरकान इतना होशियार हो गया है मुझे नहीं पता था, नादिर की आवाज़ आई। तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया है जुलेखा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या धोखा दिया है? खान साई भूल गए आप? आपने भी तो यही किया था, आपने भी तो बड़े साई के सामने कभी नहीं बताया कि आपने तो मुझसे बहुत पहले शादी का वादा कर रखा था। उस वक्त आपके बाबा ने भी आधी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मेरी तो सारी जायदाद मुझे मिल गई, आपको तो आधी ही जायदाद मिली है और अभी तक आधी जायदाद आपकी बहन के नाम है। आपने शादी के बाद मुझे कहा था कि सारी जायदाद के आप अकेले ही वारिस होंगे, जिस तरह मैं सारी ज़मीनों की अकलौती वारिस हूँ। मगर अभी तक क्या हुआ है? आप कहते थे फरा चली गई है, अब वो नहीं आएगी। लो आ गई है वो, दो उसको जायदाद का हिस्सा। जुलेखा बहुत तल्ख लहजे में चीख चीख कर बोल रही थी। बस कर जुलेखा बस, आज तक नादिर खान ने किसी को कुछ नहीं दिया, ये फरा क्या चीज़ है? मगर ये फुरकान, साई गुस्सा नहीं करो साई, फुरकान हमारी औलाद है और ये सब कुछ हमारी औलाद का ही तो है ना, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? जुलेखा ने बात बदलने की कोशिश की। साई ये सारी ज़मीनें जायदाद सब कुछ मेरे बेटों का है, मैं आपकी बहन को हरगिज़ नहीं लेने दूंगी। थोड़ी देर के लिए चुप कर सुलेखा, चुप। साई बताओ मुझे, इतने सालों बाद ये फरा यहाँ क्या लेने आई है? ऐसे तो नहीं आई होगी, ये अपना हिस्सा लेने आई है। जुलेखा तुम नादिर खान को जानती नहीं हो, मैंने बाबा साई से सारी जायदाद पर दस्तखत करवा लिए थे, जब वो बीमार था तो मैंने अपने वकील को बुलाकर उनसे साइन करवा लिए थे और ये बात किसी को पता नहीं लगने दी थी। नादर हाँ को इतना कमजोर नहीं समझना सुलेखा, पता नहीं ये फुरकान कैसे मुझे हाथ दिखा गया, मुझे इस चीज का ख्याल पहले क्यों नहीं आया था, नादर हाँ पछता रहा था। अरे साईं, ऐसा ही गम था तो आज दख्शत ना करते, सुलेखा बोली। किस तरह ना करता, फुरकान ने मुझे उस जगह बांध कर रख दिया था, सारा शहर इकट्ठा था, मैं बारात लेके गया था, खाली हाथ आना बहुत बड़ी बेइज्जती थी, मगर इस हाशिम खान ने बहुत चलाकी दिखाई, मुझे उसने वहां के फंसा दिया था और कोई चारा ही नहीं था, गुस्से में बेबसी की झलक थी। छोड़ो उसको, अब इस फरा का सोचो, जुलेखा फिर बोली। क्या सोचूं, जा रही है और अब नहीं आएगी। क्यों, पहले भी तो आप कहते थे नहीं आएगी नहीं आएगी, आ गई ना, अब क्यों आएगी, अब किससे मिलने आएगी, तुम फिक्र नहीं करो अब वो नहीं आएगी। ठीक है, मैं भी इसको ऐसी सुनाकर भेजूंगी इस दफा कि आने का सोचेगी भी नहीं। पहले कौन सा तुमने उसके प्यार से रुखसत किया था, तुम तो पहले ही जाके अपने मेके में बैठ गई थी, नादर खान ने जताया। तब मैंने कहा था कि इसको लंदन में ना भेजो, घर में रखो, मगर बाबा को तो शादी करनी थी फरा की। जब बाबा फरा के लिए रिश्ते देखने शुरू हो गए तो मुझे पता चल गया कि शादी के साथ ही फरा को जायदाद का हिस्सा देना पड़ेगा, नादर खान बोल रहा था। तो मैंने बाबा से साफ कह दिया, फरा की शादी नहीं करनी और अगर करनी है तो फरा के हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम करो। मगर तुम्हारा बाबा साई तो बहुत तेज निकला, फरा को फौरन यहां से निकाल कर ले गया, जुलेहा की आवाज में अब बदतमीजी आ गई। हाँ, बचा कर ले गया, वरना बचती ना ये फरा मुझसे। एक तो मुसीबत उसको इतना पढ़ा दिया, सारी जिंदगी उसकी काबिलियत के तरीफें सुन सुन कर मेरे कान पक गए, नादर हाँ का लहजा बहुत उकताया हुआ था। छोड़ो साईं, अब बताओ अब क्या करना है, सुलेखा ने पूछा। कुछ दिनों में जा रही है, मेरा ख्याल है कि उससे दख्शत ले लूं ताकि कल को किसी अदालत में जाकर अपना शरी हक ना मांग ले। क्या वो इतनी आसानी से जायदाद दे देगी, सुलेखा बोली। देगी, जरूर देगी, उसका बाप भी देगा। बाबा साई को मैंने साफ कर दिया था कि फरा को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरा है। और तुम्हारा बाबा साई तो बीमारी का बहाना बनाता रहा, उस वक्त मुझे डर था कि वो तुम्हारा बाबा साई किस तरह वकील से मिलकर फरा के नाम जायदाद ही ना कर दे। कर देता अगर मैं उसको मौका देता, मैंने अपने बंदे निगरानी पर रखे हुए थे, फरा को फोन तक नहीं करने दिया मैंने। हाँ हाँ मुझे याद है, मगर ये नहीं भूलो कि ये मेरा मशवरा ही था, सुलेखा बोली। हाँ हाँ ठीक है, वो तो तुम्हारा मशवरा था, मगर आज जो कुछ इस फुरकान ने किया है वो मुझे नहीं भूलेगा। हाँ साईं, कुछ नहीं हुआ, ये जायदाद बच्चों के लिए ही तो होती है। अच्छा तो फिर मैं फरहान और जमान के सुपुर्द ये जायदाद कर देता हूँ और खुद खाली हाथ वडेरा बन के बैठ जाता हूँ, नादर खां की आवाज एक दफा फिर बुलंद हो गई। क्यों, खैर से खाली हाथ हम क्यों होंगे, 20 मरबों की तो मैं अकेली मालिक हूँ, फिर वो मेरी 2 हवेलियाँ, वो बाग, वो ज़मीनें, सब कुछ तो है, जुलेखा की आवाज़ में गुरूर था। अम्मा, ओ अम्मा, फरहान की आवाज़ सुनाई दी। आजा पुत्र आजा, लहजा अपना नरम करते हुए जुलेखा बोली। अम्मा ये भाई अब भरजाई के घर में रहेगा। हैं, तुम्हें किसने कहा, नादर और जुलेखा की इकट्ठी आवाज़ गूंजी। तो तुम्हें नहीं पता, मेरा दोस्त है ना फरूक, उसकी बहन को भरजाई बता रही थी कि उसने तो शादी के दिन ही अपनी हवेली में चले जाना था, मगर सिर्फ फुरकान भाई के कहने पर एक दिन के लिए हमारी हवेली में आई है, उसने तो अपने बाप के घर में ही रहना है और फुरकान भी वहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। अम्मा तुम्हें नहीं पता था, फरहान की आवाज़ गूंजी। नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था, ये हो क्या रहा है, जुलेहा की आवाज़ में हैरानगी थी। अच्छा मैं तो समझा तुम्हें पता होगा, आपकी बार जुबान भी बोला। तो क्या अम्मा मैं और जुबान भी शादी के बाद अपने ससुराल में रहेंगे, फरहान ने सवाल किया। हाँ, अगर तुम्हारा ससुराल भी भरजाई जैनब की तरह हुआ और तुम अकलौते दामाद हुए वहाँ, जुबान हंसकर बोला। मगर फारूक की तो 3 बहनें हैं, बख्तावर तो अकेली नहीं, जुबान की आवाज़ में शरारत थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो, जमान फरहान को खींचता हुआ बाहर ले गया। जुलेहा ये जमान क्या कह रहा था, कुछ नहीं ऐसे मजाक कर रहा था, ये उम्र होती ही ऐसी है, साईं तुम परेशान न हो, अभी भी परेशान न हूं। जायदाद के बथेरे भगेड़े होते हैं, जमीनों की लड़ाइयाँ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी मजारे काम नहीं करते, कभी फसल अच्छी नहीं होती, कभी फसल की कटाई वक्त पे नहीं होती, कभी फसल की कीमत सही नहीं मिलती। जिंदगी में सुकून कहाँ है? नादिर खान की आवाज़ कुछ थकी हुई लग रही थी। खैर से जब इतनी जायदाद है तो उसको संभालना भी तो एक काम होता है, परेशान ना हो। साई खैर से तुम्हारे बेटे अब बड़े हो गए हैं, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल लेंगे, यही होना है। नादर खान की आवाज़ बहुत तल्ख हो गई। काफ़ी देर तक खामोशी रही, फिर अरमाली खोलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगी। चलो साईं अब सो जाओ, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सुलेखा बोली। तुम सो जा सुलेखा, ठंडी होकर। नादर खान अभी भी गुस्से में थे। थोड़ी देर बाद जुलेखा बोली, बेटे की शादी है, खुशी के दिन सोग ना मना। जुलेखा चुप हो जा और सो जा, नादर खान गुस्से से बोला, और फिर खामोशी हो गई। डॉक्टर फरा और जोया बिल्कुल खामोश साकत सब कुछ सुन रही थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह बैठी की बैठी रह गई। डॉक्टर फरा को पता नहीं क्या क्या याद आ रहा था। बाबा इसीलिए उसको घर से दूर रखते थे। सुलेहा का फरा के साथ शुरू से रवैया तल्ख था, और फरा को कभी समझ नहीं आती थी कि सुलेहा उसके साथ इस तरह का सलूक क्यों करती है। फ़ोन पर अब कोई आवाज़ नहीं थी, फ़ोन अभी तक ऑन था। अब लॉन में भी खामोशी थी। कभी कभी परिंदों के परों की और कभी पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आती। हवा का शोर कभी हल्का और कभी तेज़ हो जाता। कभी हवा दरख्तों और पत्तों से ज़ोर से टकराती तो आवाज़ें आ जाती, मगर ज़्यादा देर खामोशी रहती। डॉक्टर फरा ने जोया की तरफ देखा। जोया ने सर झुकाया हुआ था, जैसे उसकी कोई गलती हो गई है। डॉक्टर फरा ने जोया के हाथ पर हाथ रख दिया तो जोया ने सर उठाकर देखा। फरा बाजी, मुझे कुछ पता नहीं, ये सब कैसे हो गया है, मैंने कुछ नहीं किया। जोया, तुमने कुछ नहीं किया मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी था, इसलिए खुदा ने तुम्हें वसीला बनाया है, और अब मुझे फ़ैसला करने में और भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद फ़ोन में से कोई और आवाज़ नहीं आई। चलो सो जाओ, फरा ने खामोश जोया को देखकर कहा। जोया चुपचाप उठी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। जोया, क्या ये बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेंगी? फरा बाजी, मुझ पे एतबार कीजिए, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूं? डॉक्टर फरा बोली, जैसी आपकी मर्जी। जोया ये कहकर वॉशरूम में चले गई। वो सारी रात फरा सो नहीं सकी, पता नहीं क्या क्या सोचती रही और क्या क्या याद आता रहा। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद फरा बड़े डाइनिंग रूम में चले गई। नादर खां और जुलेखा वहीं थे, फरहान और जमान भी नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अदा। फरा कैसी हो? जुलेखा बोली, मैं ठीक हूँ। अदा, आज आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नादर खां खुश दिली से बोले। वाकई पिछले दिनों से इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ मेल मिलाप उसको बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ते के बाद फरहान और जमान चले गए। आज उनका अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस में पिकनिक का प्रोग्राम था। उन्होंने रस्मी तौर पर फरा को भी इनवाइट किया, मगर फरा ने कहा आज उसने कॉन्फ्रेंस में जाना है, उसने अपना लेक्चर तैयार करना है। फरहान और जमान के जाने के बाद फरा ने अपने आप को मजबूत करके नादर खान से बात करने का सोचा। अदा, मुझे आपसे एक बात करनी है। नादर खान और जुलेखा दोनों ने यकदम चौंक कर फरा की तरफ सवालियों नज़रों से देखा। अदा, मुझे कुछ दिनों में यहाँ से चले जाना है। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले अगर कोई ज़मीन या जायदाद मेरे नाम हो तो मैं अपना ख़ानदानी सारा हिस्सा आपके नाम कर जाऊँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाबा की जगह हैं, और बाबा की सारी जायदाद और दौलत के आप वारिस हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर ये सब कुछ आपके नाम हो जाए। मुझे सिर्फ़ आपकी मोहब्बत और प्यार चाहिए। और अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो अपने माँ बाप के घर अपने भाई को मिलने आ जाया करूँ। डॉक्टर फरा ने बहुत ठहर ठहर कर सर झुका कर बात की। ये बात शायद वो सर उठाकर नहीं कर पाती। अपनों की मोहब्बतें सर कहाँ उठाने देती हैं। थोड़ी देर खामोशी के बाद सुलेहा बोली, फरा तुम अपनी खुशी से ये सब कुछ कर रही हो। जी भरजाई, मैं चाहती हूँ अदा आज वकील से बात करें, सारे कागजात तैयार करवा लें। ठीक है फरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नादर खान की आवाज़ बिल्कुल स्पार्ट थी, कोई जज्बा कोई एहसास कुछ ना था। नादर खान एक बहुत बड़ा जागीरदार था, वडेरा था, बहुत ज़मीनों का मालिक था, शायद भाई नहीं था या बेटा नहीं था, बस वारिस था। जोया ने कमरे में नाश्ता कर लिया था और अब तक उसने सारी अपनी पैकिंग भी मुकम्मल कर ली थी। बात लेने के बाद जोया ने बहुत खूबसूरत फिरोजी ट्राउज़र और शर्ट पहन ली, साथ लाइट फिरोजी बड़ा सा दुपट्टा जिस पर पिंक रिबन लगा हुआ था, बालों को कोम करके छोटा सा क्लिप लगा दिया। जब डॉक्टर फरा कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हुई तो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने पीच कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी जो उन पर बहुत जच रही थी। फरा बाजी, आप साड़ी ही पहना करें, आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी मुसव्विर की तस्वीर की मानत। जोया ने उनको प्यार से गले लगा लिया। जोया तुम तो खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फरा के चेहरे के डिम्पल नुमाया हो गए। नादर खान ने रिवायती शलवार कमीज के साथ मैचिंग वास्टकिट पहनी हुई थी और आज सर पे रिवायती टोपी पहनी हुई थी। डॉक्टर शहबाज खान ने कराची में आने से पहले ही होटल में दो रूम बुक करवाए थे। जब फरा ने जोया को अपने साथ रखने की ख्वाहिश की तो डॉक्टर हर रोज़ फंक्शन के बाद अपने होटल के रूम में चले जाते थे। आज भी डॉक्टर साहब को होटल से ही कॉन्फ्रेंस रूम में जाना था। डॉक्टर नादर खान के हमरा डॉक्टर फरा और जोया कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे। जोया ने जुलेहा से सलाम लेकर इजाज़त चाही थी और जुलेहा ने बड़ी खुश दिली से जोया से बात की थी। इतने बड़े डॉक्टर की बहन और उसकी शिरकत से नादर खान की और भी टोर बन गई थी। जोया ने अपना बैग भी गाड़ी में रखवा लिया था। कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू हुई। आगा खां हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त और जदीद हॉस्पिटल है जहाँ बहुत से डॉक्टर्स और स्टाफ हैं। डॉक्टर कॉन्फ्रेंस अक्सर वहाँ होती रहती थी, इसके लिए हॉस्पिटल में एक अलग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया था जो बहुत बड़ा था। सारे मुल्क से बड़े बड़े डॉक्टर्स और स्कॉलर आए हुए थे और बैरून मुल्क से भी डॉक्टर्स को इनवाइट किया गया था। नादर खान के हमरा डॉक्टर फरा और जोया कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहे थे। जोया ने जुलेहा से मिलकर इजाज़त चाही। जुलेहा ने बड़ी खुश दिली से जोया से बात की। इतने बड़े डॉक्टर की बहन और उनकी शिरकत से नादर खान की और भी टोर बन गई थी। उसने जोया के लिए मिठाई का तोहफा दिया जो उसने अपने घर लेके जाना था। सब मेहमानों के लिए इस तरह के तोहफे बनवाए गए थे। जोया ने अपना बैग और वो बास्केट गाड़ी में रखवा दी। कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू हुई। आगा खां हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त और जदीद हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ही माहिर डॉक्टर्स और उनका स्टाफ है। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस अक्सर होती रहती है, इसीलिए एक अलग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया था जो बहुत बड़ा था। सारे मुल्क से बड़े बड़े डॉक्टर्स और स्कॉलर्स आते रहते थे और बैरून मुल्क से भी डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता था। डॉक्टर शहबाज खान और डॉक्टर फरा की इज़्ज़त और रुतबा देखकर आज शायद पहली बार नादर खान को एहसास हुआ कि दौलत से ज़्यादा तालीम की इज़्ज़त और अहमियत होती है। कॉन्फ्रेंस में बहुत से डॉक्टर शिरकत कर रहे थे, डॉक्टर स्पीच दे रहे थे। हर डॉक्टर्स अपने अपने शोबे से मुंसलिक तजर्बात और मालूमात फराहम कर रहा था। जब डॉक्टर शहबाज खान का नाम अनाउंस किया गया तो काफ़ी डॉक्टर्स उठकर तालियां बजाने लगे। डॉक्टर शहबाज खान ने बहुत मुख्तसर और बहुत मुफसल गुफ्तगू की और आगा खां हॉस्पिटल को ऑफ़र की कि जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो वो अवेलेबल हैं। सीनियर डॉक्टर ज़का ने कहा कि डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर फरा जैसे लोगों को پاکستان میں آنا چاہیے، پاکستان کو ان جیسے ڈاکٹرز کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فرح نے بھی اسپیچ دی اور نادر خاں کو پہلی بار اپنی بہن پر بہت پیار آیا۔ کانفرنس کے بعد ایک شاندار بفے کا اہتمام کیا گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرح نے بہت سے ڈاکٹر سے اپنے بھائی کا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر فرح کا بھائی ہونے پر آج نادر خان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج ایک لڑکی کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز جس طرح نادر خان کی عزت کر رہے تھے، فرقان، فرحان یا زمان کی وجہ سے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر فرح اپنے شعبے کے بارے میں لیکچر دے رہی تھی تو نادر دیکھتا رہ گیا۔ فرح جس کو کمزور سی لڑکی سمجھتا تھا، اس کا علم، اس کی سوچ کتنی مضبوط ہے، وہ کتنے کانفیڈنس سے اپنی تقریر کر رہی تھی۔ سب ڈاکٹرز اس کی اسپیچ بغور سن رہے تھے۔ آخر میں فرح نے ہال میں آئے ہوئے مہمانوں سے کہا، اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ فرح بہت اعتماد کے ساتھ بہترین انگلش میں جوابات دے رہی تھی۔ دیکھنا نادر، تم کبھی اپنی بہن پر فخر کرو گے۔ جب کبھی بابا یہ بات نادر خان کو کہتے تو نادر فوراً جواب دے دیتا، آدمی کبھی بھی عورت پر فخر نہیں کر سکتا، فخر اس پر ہوتا ہے جو آپ سے بہتر ہو، اور لڑکی کبھی بھی لڑکے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ بابا اس کی بات سن کر ہنس پڑتے اور کہتے، بات لڑکا یا لڑکی کی نہیں ہوتی، زندگی میں جو جتنی محنت کرتا ہے اور اپنا ایک بہتر مقصد بنا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ نادر خان کو آج اپنے بابا کی بات سچی لگ رہی تھی۔ نادر خان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، بے شمار زمینیں، جائیداد، پیسہ، کیا نہیں تھا، مگر اس کو ہر وقت فکر لگی رہتی کہیں وہ کم نہ ہو جائے، اور پیسہ بڑھانے کی دوڑ میں وہ بھاگتا رہتا۔ سکون، اطمینان جو آج فرح کے چہرے پر تھا، اس کا اثر اشیر بھی نادر خان کے دل میں نہ تھا۔ ڈاکٹر شہباز خان نے کراچی میں اپنا سٹے ایک 5-star ہوٹل میں کیا ہوا تھا، جبکہ زویا ڈاکٹر فرح کے ساتھ حویلی میں ہی 3 دن رہی۔ ڈاکٹر صاحب ہوٹل سے شادی کی تقریبات میں شرکت کرتے اور پھر واپس ہوٹل میں آ جاتے تھے۔ زویا کو ڈاکٹر فرح نے اپنے پاس رہنے کی درخواست کی تھی اور زویا بھی ڈاکٹر فرح کے ساتھ بہت خوش تھی۔ کانفرنس کے بعد کھانے کے ٹیبل پر زویا، ڈاکٹر فرح، نادر خان اور ڈاکٹر شہباز اکٹھے تھے، مگر ڈاکٹر شہباز خان کو بہت کم موقع ملا کہ وہ ڈاکٹر فرح سے بات کرے۔ بہت سے دوسرے ڈاکٹرز ان کے ساتھ محفل گفتگو رہے۔ ویسے بھی فرح کے ساتھ ہر روز اس کی واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور فرح کی کوشش یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی ڈاکٹر شہباز سے اپنے بھائی کے سامنے کم از کم بات کرے۔ فرح نادر خان کے سامنے کوئی بھی ایشو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اوکے، اب ہمیں اجازت دیجیے، ڈاکٹر شہباز خان نے دوسرے سب مہمانوں سے الوداع ہونے کے بعد نادر خان سے اجازت چاہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بیٹے کی شادی پر آ کر ہماری عزت افزائی کی۔ نادر خان واقعی ممنون لگ رہا تھا۔ ہمیں خود آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، آپ کبھی اسلام آباد آئیں تو ضرور ہمارے گھر پہ تشریف لائیے گا۔ ضرور، میں ضرور آؤں گا، اور اپنے والد صاحب کو میرا سلام ضرور دیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر فرح، آپ کا بہت شکریہ، کانفرنس کافی اچھی رہی۔ ڈاکٹر شہباز خان نے رسماً ڈاکٹر فرح سے بات کی۔ جی بالکل، اچھا خدا حافظ، اب ہماری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، ہمیں 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ جانا ہے۔ ہوٹل سے ٹیکسی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر شہباز خان نے نادر خان کی گاڑی سے زویا کا بیگ نکالا، ڈرائیور نے فوراً ٹیکسی میں رکھ لیا اور ساتھ ہی وہ مٹھائی کی باسکٹ بھی رکھ لی۔ پھر ڈاکٹر شہباز خان اور زویا ایئرپورٹ چلے گئے۔ نادر خان نے مڑ کر ڈاکٹر فرح کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے سنیے اگلی آخری قسط۔